Awakening with Brahma Kumaris.
ओम शांति। अवेकनिंग रामा कुमारी में इन दिनों हम बात कर रहे हैं माइंड मैटर्स की, एक वो श्रृंखला जिसमें हमने जाना अपने मन के बारे में और मेंटल इलनेसेस के बारे में। आज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो प्रॉब्लम है डिमेंशिया, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी याददाश्त जो है वो कमजोर होने लगती है। लेकिन कब ये बीमारी बन जाती है और कैसे इसको जो है हम संभाल कर रख सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हर बार की तरह है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी और जाने माने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। डॉक्टर साहब, उम्र के साथ याददाश्त कमजोर होती है, बहुत सारी और चीजें जो हैं वो हमारे जीवन में कम होने लगती हैं, लेकिन आज के दौर में अगर हम देखें तो जो डिमेंशिया जो प्रॉब्लम है वो कितनी ज्यादा प्रेवलेंट है, उससे जुड़ी हुई कुछ और भी बातें हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा बन सकती हैं।
डिमेंशिया को मैं एक लास्ट स्टेज अगर समझूं, लास्ट स्टेज इन द सेंस कि ये उम्र के आमतौर पे एक खास समय पर आती है और जितनी होती है जिस रूप में आती है उससे पहले ही कई चीजें हमारे जीवन में होती हैं जिनको हम ज्यादातर ध्यान नहीं देते। जिस समय हम पैदा होते हैं तो ब्रेन के कुछ सेल्स होते हैं जो धीरे धीरे मैच्योर होने शुरू होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो ब्रेन के सेल्स हैं उनका साइज बढ़ता है, उनके आपस में कनेक्शंस बढ़ते हैं, लेकिन नंबर्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। और एक उम्र के बाद, मिड ट्वेंटीज थर्टीज के बाद, वो कम होने शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे।
सेल्स
कम होने शुरू हो जाते हैं लेकिन उनके कनेक्शंस बढ़ते रहते हैं। लेकिन इतने बिलियंस ऑफ सेल्स हैं कि थोड़े से कम हो गए फर्क नहीं पड़ता। अगर हम उसको अच्छी तरह से यूज करें तो हमारे माइंड की अथाह पावर्स हैं याद कर पाने की भी, उसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाने की भी। और जैसे जैसे समय बीतता है तो हमने जो एक्सपीरियंस से सीखा है, जो हमारी पुरानी मेमोरीज हैं, वो नई मेमोरीज को एनकोड होने में भी मदद करती हैं। यहाँ पे शायद इम्पॉर्टेंट होगा ये समझना कि मेमोरी जो है वो एक प्रोसेस है और अगर हम उसे समझ के चलेंगे तो मेमोरी को सशक्त कैसे करें और डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम को बाद में आने से कैसे कम कर सके वो भी समझ में आ जाएगा। पहली स्टेज है अटेंशन, यानी हमने किसी चीज को याद रखना है या किसी चीज की तरफ हमारा ध्यान गया, वो है अटेंशन। सेकंड है कंसंट्रेशन, उस पर हमने कुछ देर के लिए ध्यान को केंद्रित किया। और ये हर चीज के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे हम पढ़ रहे हैं, चाहे पिक्चर देख रहे हैं, चाहे किसी से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद जब हमारा अटेंशन होता है तो चाहे हम कुछ सुन रहे हैं या देख रहे हैं या वैसे महसूस कर रहे हैं, वो हमारे ब्रेन के ऊपर रजिस्टर होती है। और रजिस्टर होने के बाद वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है। जैसे आपने मुझे कोई फोन नंबर बताया, मैं कुछ मिनटों के लिए उसे याद रख पाऊंगा, लेकिन अगर मैं उसे बार बार रिपीट नहीं करूंगा या एक्चुअली एक्शन में नहीं लाऊंगा तो वो थोड़ी देर बाद भूल जाएगा। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी के बाद होती है मिड टर्म मेमोरी। जैसे कि हमारे घर में कौन रहते हैं, हमने किसी से कोई बात की और अगर बार बार की, हम किसी रूट पे रोज जाते हैं तो उसके बारे में डिटेल, वो जितनी बार रिपीट होती है और बिना घबराहट के रिपीट होती है, पूरी तरह से उसके लिए हम समय लगाते हैं और फिर उसको रिपीट करते हैं तो वो धीरे धीरे और पक्की हो जाती है और लास्ट स्टेज पर है जिसको हम लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरे परिवार में कौन है, मैं किस जगह रहता हूँ, मेरी जो पढ़ाई है, मैंने जिस तरह का प्रोफेशन किया है, वो धीरे धीरे पक्का होता रहता है। अगर रजिस्ट्रेशन ठीक नहीं हुई है तो वो हमें याद नहीं रहेगी। और इसीलिए आज तक कई बार ज्यादा तरह से लोग कहते हैं कि मुझे चीजें याद नहीं रह रही, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने का हमने टाइम ही नहीं दिया। अगर हमारा ध्यान चार चीजों में जा रहा है तो एक चीज के ऊपर ना अटेंशन रही, ना उस पर ध्यान फोकस रहा, ना कंसंट्रेशन रही, ना हमने उसको याद करने की कोशिश की, तो जो टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। कई बार हम तीन चीजें इकट्ठी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं और किसी से सेलफोन पे भी बात कर रहे हैं, तो तीनों चीजों में डिवाइड हो गए। कई बार लोग खाना खा चुके होंगे, उन्हें याद नहीं रहेगा कि मैंने कितनी रोटियां खाई थी, या टीवी में क्या प्रोग्राम चल रहा था, या मैंने फोन पे पूरी क्या बात की। तो उसमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से भी लोगों को प्रॉब्लम रहती है। अगर सही प्रकार से हमने उस चीज को शुरू में याद होने के बाद बार बार रिपीट नहीं किया तो भी वो कम होनी शुरू हो जाएगी। अगर कुछ डेफिशिएंसीज हैं बॉडी में जिसकी वजह से ब्रेन की जो केमिस्ट्री है वो पूरी तरह से सशक्त नहीं होती, उसकी वजह से भी ये अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी के जो प्रोसेसेस हैं वो कम होने शुरू हो जाएंगे। अगर हम बहुत एंग्शियस हैं, या हम बहुत डिप्रेस्ड हैं, या हमारी डाइट नॉर्मल नहीं है, या हमें कुछ फिजिकल इलनेसेस हैं, खासतौर पर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड की कमी होना, हाइपोथायराइडिज्म, या हार्ट की कुछ इलनेसेस हैं जिसमें कि थोड़े थोड़े ब्रेन के अंदर जो हैं वो वहाँ पे गल जाते हैं, जिसको मैक्रोनेरोसिस कहते हैं, तो उसकी वजह से भी ब्रेन की जो इनकोडिंग है वो ठीक नहीं होती। उम्र के साथ साथ ये प्रोसेसेस, खासतौर पे अगर हम पूरा ध्यान नहीं रखते, खासतौर पे एक्सरसाइज इसका एक बहुत बड़ा रोल पाया गया है, क्योंकि एक्सरसाइज में आपकी ब्लड की सर्कुलेशन भी बढ़ती है और जो ब्रेन को ब्लड जाता है वो भी बेटर होता है। तो अगर ये सब चीजें हम ध्यान से नहीं करते तो एक उम्र के बाद वो जो क्रिटिकल है उसमें भूलना ज्यादा हो जाता है, याद होना कम हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए भूले फिर याद आ गया, किसी ने याद दिलाया और याद आ गया, तो वो डिमेंशिया नहीं है, वो प्रॉब्लमेटिक इश्यू नहीं है। लेकिन अगर वो लगातार हो रहा है और बढ़ रहा है और हमें याद ही नहीं आ रहा, और उसके साथ ही कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हम कंफ्यूज्ड हो गए, हमें नींद नहीं आ रही, या हमें बहुत एंजाइटी हो रही है क्योंकि हमें याद नहीं आ रहा, या हम चीज़ों को सही रूप से समझ नहीं पाते, या हम बहुत इरिटेबल हो रहे हैं, या हम चीज़ों को सही तरह से जो पहले करते थे, चाहे पढ़ते थे या एक रेगुलर बातचीत करते थे या जो प्रोफेशन था उसको करते थे या टेक्नोलॉजी को यूज़ करते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे चांसेस हैं कि वो एक प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम को इकट्ठा मिला के डिमेंशिया, जिसको कि हिंदी में सठियाना कहते थे, बड़ा अजीब सा वर्ड है, लेकिन पहले लोगों की एज बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। आपको शायद ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि सिर्फ 60 वर्ष के करीब पहले जब भारत आज़ाद हुआ तो एवरेज एज लोगों की 32 साल थी।
अच्छा
जी, एवरेज एज, मतलब बहुत से लोग थे जो उससे पहले मर जाते थे, बहुत सारे थे जो कुछ थोड़ा लेट तक चलते थे, लेकिन एवरेज एज 32 साल थी,
बीमारियों के कारण
होता, बीमारियों के कारण। लेकिन अब लॉन्गेविटी बढ़ती गई है, भारत पिछले करीबन 10 से 15 वर्षों में 8 साल हमने एवरेज लोगों की एज को ऐड किया है, तो आज वो एवरेज एज 66 से 70 साल है किस अलग अलग जगहों पे भारत में। तो क्योंकि लोग ज्यादा जी रहे हैं लेकिन ज्यादा बीमारियों के साथ भी जी रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ जगहों पर स्टिमुलेशन बहुत कम है। अगर लोग ओल्ड एज में अकेले रहें या परिवार साथ में नहीं है, या उन्हें डिप्रेशन है, या उनको जो दवाइयां ले रहे हैं उसकी वजह से उनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, तो जो पहले 60 साल पे समझा जाता था कि एजेस होंगे, चेंजेस होंगे, वो चेंजेस अब थोड़ा सा लेट आते हैं, लेकिन 70 में 75 में कुछ चेंजेस देखने शुरू होते हैं। लेकिन अगर बहुत स्पीड से आए और वो व्यक्ति की जिंदगी में, डे टू डे फंक्शनिंग में प्रॉब्लम करे, तो वो डिमेंशिया नाम से प्रॉब्लम।
डॉक्टर साहब, यह एक जो बात दिमाग में आ रही है वो ये कि ये सारी जो चीजें हैं जो अगर बच्चों में आज हमारे हैं, तो इनको ये याददाश्त की बीमारी हो पाना, हो जाना ज्यादा लगता है कि ये चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, दिस कैन बी एंड वी नीड टू वर्क फ्रॉम दिस मोमेंट ओनली, या ये इससे कोई रिलेटेड नहीं है उसके उस प्रॉब्लम।
देखिए, किस प्रकार से हम अपनी मेमोरीज को एनकोड करते हैं वो ऑलमोस्ट एक लाइफ लॉन्ग चीज हो जाती है। और अगर शुरू से ही हम मल्टीटास्किंग, जिसको आप जिसकी बात कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग में हम एक चीज के ऊपर तो फोकस हो ही नहीं पा रहे ना, तो वो एनकोडिंग हो ही नहीं पा रही, तो ब्रेन जो है और ब्रेन के जो कनेक्शंस हैं वो डीप तो जा ही नहीं रहे हैं, और उसी वजह से मेमोरीज जो हैं, ज्यादातर लोग अनफॉर्चुनेटली अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए चीजों को याद करने के लिए। तो कंप्यूटर में आपकी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर कंप्यूटर से वो इन्फॉर्मेशन चली जाए या मेरा सेलफोन मुझसे गुम जाए तो शायद 2 या 3 फोन नंबर ही हमें याद रहेंगे। हमारे पास याद पहले लोग, क्योंकि उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो चाहे लिखते थे चाहे उसको बार बार करते थे और कम चीजों को करते थे, तो उससे जो मेमोरी की इनकोडिंग है वो बेटर होती थी। अगर हमने वो चीज सीखी नहीं है तो समय के साथ साथ बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के या टेक्नोलॉजी के ब्रेन की जो मेमोरीज है वो कम होंगी, और बाद में अगर हम उसके ऊपर उतना ही जोर डालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे।
तो इसका मतलब यहीं से नींव डलती है हमारी मेमोरी का जो पूरा प्रोसेस है उसकी।
ब्रेन का ऑपरेटिंग सिस्टम माइंड है, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको अगर हम शुरू से ही एक खास तरीके से एनकोडिंग करने का तरीका समझाएंगे तो वही चीज बाद में भी अच्छी तरीके से यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर हम उसको इसी रूप में यूज करेंगे कि शॉर्ट टर्म मेमोरीज के लिए या किसी बाहरी चीज की मदद से ही हम उसको कर रहे हैं, तो बाद में जाके जैसे जैसे वो सेल्स की डेथ होनी शुरू होगी या जो बाद में एक खास एज के बाद प्रॉब्लम आएगी तो हम उस चीज को उतना अच्छा नहीं संभाल पाएंगे। तो इसीलिए ये चीज अगर बचपन से ही शुरुआत हो, और उसके लिए प्रैक्टिसेस की जा सकती हैं कि उनको कहा जाए कि एक जगह पे बैठ के एक चीज को ही पूरी तरह से फोकस करके अटेंड करके, सेम बच्चा बाकी चीजों में भागता दौड़ता है लेकिन कार्टून आए तो उसके ऊपर फोकस हो सकता है। तो अगर हम उसे ट्रेन करें या उसकी मदद करें कि वो हर चीज के ऊपर बीइंग इन द हेयर एंड नाउ, आज के समय में इस समय में जो चीज हो रही है उस पे पूरा फोकस करो, तो ये जो प्रैक्टिस है ये बाद में जाके भी काम आएगी।
व्हाट आर द रियल सिम्टम्स, जब हमें रियलाइज हो जाए कि हमें शायद ये बीमारी हो सकती है, हमारे किसी परिवार वाले को हो सकती है?
पहली चीज ये प्रोग्रेसिव होगी, यानी आज हुई कल नहीं हुई ऐसा नहीं है, होनी शुरू हुई तो धीरे धीरे बढ़ेगी। कुछ सिचुएशंस में ये एक्यूट हो सकती है, और अगर एकदम आनी शुरू हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ब्रेन डैमेज हुई है। उसके लिए इमीडिएटली डॉक्टर की मदद लेना जरूरी है, क्योंकि कई बार स्ट्रोक्स होते हैं
जो पता नहीं लगते,
या ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई कुछ देर के लिए कम हुई, या डायबिटीज की वजह से ब्रेन के अंदर कुछ खास ब्लीडिंग होनी शुरू हुई, या ब्लड प्रेशर की वजह से हुई, या कोई और डिसऑर्डर हुआ, हार्मोनल प्रॉब्लम्स हुई, या वो कोई दवाई ले रहे थे जिसका साइड इफेक्ट हुआ, तो अगर दिनों के अंदर ऐसा हो जाए तो उसमें ऑलमोस्ट सर्टनली ब्रेन की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके लिए जितना जल्दी मदद लेंगे पहचान कर उतना जल्दी वो ठीक होंगे।
न्यूरोसाइंटिस्ट के पास किसके पास जाना जरूरी है?
इसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट के पास, न्यूरोफिजिशियन जिसको कहा जाता है, और साथ में अगर कुछ बिहेवियरल चेंजेस हैं, यानी वो व्यक्ति एकदम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया, उसे पता ही नहीं लग रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, घर कहाँ है, किस कमरे में है, टाइम क्या हुआ है, ये चीजें भी अगर भूलने लगे तो ये एक तरह से इमरजेंसी है, क्योंकि ये जल्दी ठीक हो सकती है। तो इसके लिए न्यूरोफिजिशियन को, या अगर बिहेवियरल प्रॉब्लम है साथ में, बहुत ज्यादा रेस्टलेस है, सो नहीं पा रहा है, थोड़ा कभी कभी वो एग्रेसिव हो जाते हैं, या उनकी पर्सनैलिटी में चेंज आ गया, कई बार उन्हें ही नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ, किससे क्या बात कर रहा हूँ, या उनकी पुरानी मेमोरीज बहुत ठीक है लेकिन अभी वाली मेमोरीज जो है वो एकदम गायब जानी शुरू हो जाती है, तो ऐसे में साइकियाट्रिस्ट के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना जरूरी है। लेकिन अगर एक्यूट है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना बेहतर है, क्योंकि वो डायग्नोज कर सकता है कि क्या फिजिकल कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से ब्रेन के ऊपर असर हुआ है। जितना जल्दी ठीक होगा, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी डिमेंशियाज, यानी कोई कारण रहा फिजिकल जिसकी वजह से ब्रेन में डैमेज हुई, उसको ठीक करेंगे तो चांसेस है कि ब्रेन डैमेज धीरे धीरे बेटर हो जाए। लेकिन अगर बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली वीक्स और मंथ्स में ये प्रोसेस होना शुरू हो रहा है तो परिवार वाले पहले तो समझ नहीं पाते, और क्योंकि बहुत इम्परसेप्टेबली चेंज हो रहा है, और उसके बाद सोचते हैं कि अच्छा ये तो एज रिलेटेड है, चलो 70 साल की उम्र में कुछ तो फर्क होगा ही। लेकिन ये भी बात समझने की कि अगर व्यक्ति जब तक जी रहा है तब तक एक अच्छा जीवन जिए तो उसके लिए और परिवार वालों के लिए, दोनों के लिए सहूलियत है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को संभालने के लिए भी तो परिवार वालों की जरूरत है ना। तो उसमें जितना वो उसकी जल्दी मदद करेंगे, जो प्रॉब्लम है उसको ट्रीट करेंगे, और उसके लिए आज के समय में कुछ खास तरह की, डिपेंडिंग ऑन, कोई अगर डेफिशिएंसीज हैं, कई बार कुछ विटामिन डेफिशिएंसीज की वजह से या डायट्री डेफिशिएंसीज की वजह से भी ऐसा हो सकता है, तो अगर उस चीज़ को ठीक करेंगे तो वो चीज़ को बेटर कर पाएंगे, और उसकी वजह से फिर लॉन्ग टर्म डैमेज जो है, जो कि स्पीड से बढ़ेगी, वो कम की जा सकती है।
ओके, और बाकी बीमारियों के साथ भी, सपोज बाकी भी बीमारियां चल रही हैं, उनकी भी दवाइयां चल रही हैं, तो तब भी अगर इनकी भी हम दवाई देते हैं तो इट विल नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट, कोई साथ चल सकता
है। ये डॉक्टर को डिसाइड करना पड़ेगा कि बाकी क्या दवाइयां चल रही हैं, उसकी वजह से कितना ब्रेन के ऊपर डैमेज हुआ है, और जो अभी डैमेज हुई है उसके लिए कोई और दवाई की जरूरत है या नहीं, और वो बाकियों के साथ कैसे चल सकती हैं। तो मैं ये समझूंगा कि इसको जल्द से जल्द पहचानना फैमिली की, क्योंकि ये व्यक्ति खुद तो नहीं पहचान पाएंगे, तो ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, और जल्द से जल्द ले जाना। अनफॉर्चुनेटली आज के संदर्भ में हम ये भी देख रहे हैं कि कई परिवार ऐसे हैं जिनमें कि फैमिली मेंबर्स वृद्ध व्यक्ति के साथ नहीं है, और कई बार एल्डरली कपल इकट्ठे रहते हैं, एक व्यक्ति नहीं रहा किसी कारण से, डेथ की वजह से, और दूसरे जो परिवार के मेंबर रह रहे हैं, या तो वो दूसरे शहर में रह रहे हैं, या एक शहर में भी घर उनसे दूर रह रहे हैं, या किसी और कंट्री में रह रहे हैं, तो ये सिम्टम्स कई बार बिल्कुल ही नहीं पता लग पाते। तो वहाँ पर मेरे ख्याल से कॉन्टैक्ट रेगुलर रखे रहना और पता रखते रहना कि उनकी पर्सनैलिटी में तो कहीं चेंज नहीं आ गया, या अपनी वो कहीं पैसे तो नहीं भूल जाते हैं, कहीं पासबुक तो नहीं भूल जाते हैं, या उनके सिग्नेचर जो हैं वही बदलते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें याद ही नहीं कि उन्होंने क्या किया है। तो ये चीजें जो हैं ये सबसे पहले साइंस हो सकते हैं, तो इनको पहचान पाना और फिर उसके बाद मदद करना परिवार के लिए जरूरी हो जाता
है। शिवानी, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो हम सब डिजर्व करते हैं, और ये बिल्कुल सही बात है कि आज के वक्त में हम अपनी ही क्वालिटी ऑफ लाइफ, अपनी ही भागम भागी में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि हम ये मानते हैं कि चलो ये एज आई तो ये सब होगा ही होगा, यू नो लाइक हो ही रहा है, अगर मेमोरी लॉस है, पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप है। लेकिन टू टेल माई सेल्फ, यू नो, कि अब खुद मुझे अपने आप को तैयार करना कि मेरा अगर पेरेंट है या कोई बुजुर्ग है वो डिजर्व करते हैं, और आज हमारे पास अवेलेबल हैं चीजें, तो वो हम अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते क्योंकि हम ऑलरेडी मुझे लगता है इतनी भागम भाग में है कि हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज कि हम उनके इस एस्पेक्ट को एक्चुअली उसकी केयर कर पाए।
So important now that we understand के it was such a beautiful line के जब तक जीना है, you know, हमें ये लगता है कि हाँ ये एज है तो अब धीरे धीरे इसे डिक्लाइन, यू नो, जिसको हम कहेंगे फिजिकल हेल्थ का डिक्लाइन तो होता ही होता है, लेकिन वो जीना, यू नो, लेट्स से उस फेज में, सपोज आई स्टार्ट लूजिंग माई मेमोरी एंड उस फेज में मुझे 4 साल, 5 साल, हो सकता है 10 साल आई एम अलाइव, सो How will be that quality of my life? And फिर वो सिर्फ मुझ पर नहीं असर करने वाला ना, चैलेंजेस ज्यादा तो फैमिली के ऊपर आएंगे उस टाइम उनको संभालने के लिए, तो क्यों ना हम उसको ध्यान रखें कि इट डजेंट मैटर कि क्या एज है, चाहे वो 60 है, 80 है या उससे भी ज्यादा है, बट वी नीड टू सी कि वो क्योरेबल है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने लिए आज से, क्यों इसमें हमें स्पिरिचुअलिटी बहुत हेल्प करती है कि आज हमने भी अपनी मेमोरी को किन किन चीजों से क्लटर कर लिया, जैसे कहा मल्टीटास्किंग, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग मल्टीटास्किंग नाउ, बच्चों की कंसंट्रेशन पावर, जस्ट द अदर डे आई मेट अ 16 ईयर ओल्ड गर्ल, शी सेड कंसंट्रेट नहीं होता, एग्जाम है एक महीने बाद तो क्या करना है, आई सेड कहां ध्यान जाएगा, फोन पड़ा है साइड पे, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जब हम पढ़ते थे ना साथ में फोन पड़ा था, ना साथ में कंप्यूटर पड़ा था, और ना सामने टीवी पर कुछ आना था, क्योंकि आना था तो रात को 9 बजे आना था। अब जब अवेलेबिलिटी ही इतनी होगी तो ऑटोमेटिकली पढ़ना इज नॉट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग फॉर एवरीबडी, या जैसे डॉक्टर अवधेश ने कहा कि कार्टून में आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है ना, लेकिन पढ़ना तो उतना इंटरेस्टिंग होता ही नहीं है, तो जब साथ में और इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी होंगी تو نیچرلی آپ ہر 10 منٹ بعد دیکھو گے کہ واٹس ایپ کس کا آیا, فیس بک پہ کس نے اپلوڈ کچھ کیا. اچھا کچھ نہیں تو 10 منٹ بعد 5 منٹ کے لیے ٹی وی آن کر لیتے ہیں. تو یہ ہمیں ایز اے فیملی اینڈ اسٹوڈنٹ کو خود, اگر وہ اپنی, کیونکہ آج ہر اسٹوڈنٹ صرف کہہ رہا ہے کانسنٹریٹ نہیں ہو رہا, ہر پیرنٹ اور ہر ٹیچر ان کو کہہ رہے ہیں کانسنٹریٹ کرو, وہ کہتے ہیں نہیں ہو رہا, وہ کہتے ہیں کرو اینڈ ٹاپک وہیں کے وہیں ختم ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اتنا بھی کر کے دیکھیں کہ ہمیں ٹیکنالوجی کو اپنے آس پاس نہیں رکھنا ہے وین وی آر ٹو اسٹڈی, کہ یہ 2 گھنٹے میں نے نہ فون کو ہاتھ لگانا ہے نہ کمپیوٹر کو ہاتھ, لیٹ می سی نا واٹ ہیپنس. اینڈ کوئی بھی چیز ایک دم سے نہیں ایسے بڑھے گی, لیکن بڑھے گی تو صحیح. جیسے بتایا میموری پاور, یوز نہیں کر رہے تو گھٹ رہی ہے, اب ہم یوز کرنا شروع کریں. لیٹس میک اٹ اے پوائنٹ ٹو ریمبر فون نمبرس. ابھی ڈاکٹر اودیش نے کہا 3-4 فون نمبرز, آئی واز تھنکنگ ویدر آئی ریمبر 3-4 فون نمبرز, آئی ڈونٹ تھنک سو, کیونکہ وہ سارے اویلیبل ہیں. تو اف وی کانشیسلی اسٹارٹ ڈوئنگ دیز تھنگس کہ مجھے یہ کرنا ہے, تو آئی تھنک ہماری میموری بھی بڑھے گی, ہماری کانسنٹریشن پاور بھی بڑھے گی. اور اگر ہم ڈیلی میڈیٹیشن اور اسپرچوالٹی کو یوز کرتے ہیں, ہم اپنے مائنڈ کو کلین رکھتے ہیں. یو نو اتنا اکیوملیٹڈ یہاں بھی ہو رہا ہے, یہ بھی ہو رہا ہے, انفارمیشن یہاں سے اور انفارمیشن ہماری اپنی لائف کی جس کو ہم ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتے. میں نہیں بھول سکتی, وہ بات بھی نہیں بھول سکتی, اس نے جو کہا وہ بھی نہیں بھول سکتی. تو اتنا اوور لوڈنگ آف انفارمیشن آف دا ورلڈ اینڈ انفارمیشن آف مائی پاسٹ, تو وہ بھی شاید ایک بہت بڑا بوجھ یہاں پر بنتا ہے, جس کو ہم کہیں گے کہ لائف اسٹائل, کہ یہ ہماری آج لائف اسٹائل ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیں پرابلمس آتی ہیں. تو ہم اپنی آرگنائزیشن میں برہما کماریز میں دادیز کو دیکھتے ہیں یا ہم سب دیکھتے ہیں سنتوں کو مہاتماؤں کو, ان کی ایج کتنی ہے, 80, 85, 90, بٹ لک ایٹ دیئر الرٹنس, دیئر شارپنس, دیئر مائنڈ, بیکاز دے یوزڈ دا پاور آف دا مائنڈ ان اے ویری ڈفرنٹ وے دیئر ہول لائف. تو ہم سب بھی وہ کر سکتے ہیں اگر ہم ڈیلی صرف اپنے مائنڈ کو ڈی کلٹر کریں, کلین کریں, تو وہ لائٹ رہے گا. جتنا لائٹ رہے گا شاید پاورفل اتنا رہے گا, اتنا تھکے گا نہیں سارا دن, تو آبویسلی اس کی کانسنٹریشن پاور تو بڑھتی جائے گی. دیٹس وائز جتنی یہ لائف اسٹائل کی پرابلمس ابھی آئی ہیں, اسی لائف اسٹائل میں اگر اسپرچوالٹی کو ہم ڈالتے ہیں تو وہ تھوڑا سا ہمیں اس کو بیلنس کرنے میں اور اپنے آپ کو ہیلدی رکھنے میں, ایموشنلی بھی اور فزیکلی, ڈیفینیٹلی پلیز اے ویری ویری بگ رول. اینڈ دیٹس وائی وی سے اسپرچوالٹی اینڈ میڈیٹیشن فار ہیلتھ, یو نو, اسی لیے اس کو ہیلتھ کے ساتھ اتنا کنیکٹ کیا جاتا ہے. اٹس ناٹ جسٹ ریلیجن, اٹس ہیلتھ ریلیٹڈ. تو ایٹ لیسٹ اپنے ہیلتھ کے لیے صحیح, وی نیڈ ٹو انٹروڈیوس اٹ ان ٹو آر لائف اسٹائل.
یہاں پر جو مینٹل ہیلتھ کے لیے خاص طور پہ اسپرچویلٹی اینڈ پرنسپلز آف اسپرچویلٹی, چاہے وہ بریدنگ ٹیکنیکس ہیں جو کہ ڈیپ بریدنگ کر کے آپ اپنی برین کی ایکچولی آکسیجنیشن کو بڑھاتے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ آپ ریلیکس ہوتے ہیں تو جو آپ کے برین کی انکوڈنگ ہے وہ بیٹر ہوتی ہے, یا آپ جب فزیکل ایکسرسائزز کرتے ہیں اور اس سمے میں اسپیشلی اگر آپ نیچر کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس سمے میں آپ کی جو انپٹس آتی ہے وہ اس سمے کے لیے آتی ہے, پاسٹ اینڈ فیوچر کا جو ہے وہ اس میں آپ کا دھیان نہیں آتا. سملرلی اف یو اسٹارٹ لیونگ ان دی ہیئر اینڈ ناؤ, جس میں کہ آپ پہلے کی چیزوں کا اوور برڈن نہیں کرتے, فیوچر کی چیزوں کا بہت زیادہ پلان نہیں کرتے, تو ابھی کے لیے آپ کا مائنڈ جو ہے وہ زیادہ اویلیبل ہوتا ہے تو اس کی انکوڈنگ بیٹر ہوتی ہے. اگر آپ زیادہ ٹینس نہیں ہوتے ہیں, اگر آپ ہر چیز سے ایموشنلی ہتاش نہیں ہوتے ہیں, تو اگین انکوڈنگ بیٹر ہوتی ہے. جو پرانے رشتے ہیں ان رشتوں کی مہک کو اگر آپ محسوس کرتے ہیں تو آپ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک کنیکٹیویٹی بنی رہتی ہے, اس سے بھی مینٹلی اسٹیمولیشن ہوتی ہے. یہاں پہ سب سے بڑی چیز ہے کہ بالکل یوز نہ کرنا یا اوور یوز کرنا, دونوں ٹھیک نہیں ہے. اس کا جو بیلنس ہے کہ میں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھوں فزیکلی, مینٹلی, اسپرچولی اینڈ سوشلی, اور ساتھ ہی ساتھ میں چیزوں کو ان کے صحیح پرسپیکٹو سے دیکھ پاؤں, زیادہ پریشان نہ ہو پاؤں, اور میرا ایک پرپز آف لائف ہو جس کی وجہ سے میں جی بھی پا رہا ہوں اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی, تو وہ بھی برین کی ایکٹیویٹی کو بڑھاتا ہے. وی نو ناؤ کہ اگر آپ دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو باڈی میں کچھ ہارمونز نکلتے ہیں, اور وہ ہارمونز جو ہیں وہ برین کے لیے بھی اچھے ہیں. اگر آپ خوش رہتے ہیں تو اگین کچھ پازیٹیو ہارمونز نکلتے ہیں جو کہ برین کی ایکٹیویٹی کے لیے بیٹر ہیں. اگر آپ اچھی ڈائٹ لیتے ہیں جس میں کہ یو نو ویجیٹیرین فوڈ، لاٹس آف ویجیٹیبل، فروٹس، فل آف وائٹمنس، وہ بھی اگین برین کے لیے اچھے ہوتے ہیں. اگر آپ ایڈیکویٹ سلیپ لیتے ہیں اور صحیح سمے پر سو کر صحیح سمے پر اٹھتے ہیں، اگین برین کی ایکٹیویٹیز بیٹر ہوتی ہیں. اگر ہم میڈیٹیٹ کرتے تو اس سے جو برین کی ویوز ہیں وہ زیادہ بیٹر ہو جاتی ہیں، برین کے الگ الگ جو حصے ہیں وہ سنکرونائز ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی برین کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، پاور ہے، اٹینشن ہے، کنسنٹریشن. ناؤ دیر از ایویڈینس ٹو شو کہ میڈیٹیشن کرنے سے آپ کے اٹینشن، کنسنٹریشن، انکوڈنگ آف میموری اور پھر بعد میں یاد آنا وہ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. برین کو میڈیٹیشن کے وقت میں زیادہ آکسیجن، زیادہ نیوٹریشن اور زیادہ آکسیجنیشن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی وہ اس کی امپرومنٹ ہوتی ہے. سو اگین اٹ ہیز بین فاؤنڈ کہ اگر آپ ریگولرلی میڈیٹیٹ کرتے ہیں اسپیشلی 6 مہینے کے لیے، تو برین کے اندر کچھ پازیٹیو چینجز ہونے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ ایم آر آئی اسکینس پہ، ایف ایم آر آئی جس کو بولتے ہیں، اس کے اوپر دیکھے جا سکتے ہیں. پلس ایک پرپز آف لائف، اور اس پرپز آف لائف میں صرف اپنے لیے نہیں لیکن دوسروں کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، اگر وہ بھی استعمال آپ کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں، اگین اٹ ہیلپس یو ان ریٹارڈنگ دا ایجنگ. کئی بار جو پرانی چیزیں ہیں، خاص طور پہ میوزیکل ٹیونز ورڈز کے ساتھ، وہ بہت فائدہ دیتی ہیں، یا جو پہلے آپ نے کچھ پڑھا ہے اس کو بیچ بیچ میں یاد کرنا. آج کے سمے میں کئی طرح کی گورنمنٹ، نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں، آپ کے آس پاس ادھیاتم سے ریلیٹڈ کئی آرگنائزیشنز ہیں جن کا کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، نئے طرح کے لوگوں سے اس کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم اپنے آپ بھی بزی رہ سکتے ہیں. سو دیز آر تھنگس وچ کین ہیلپ ان ریٹارڈنگ، ڈیلینگ اینڈ امپروونگ ڈیمینشیا.
اینڈ ڈاکٹر صاحب، جو آپ نے کہا کہ میوزک جو ہے دیٹ کین آلسو بی اے بگ تھراپی، خاص کر اس عمر میں اگر ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہماری بہت پیاری میموریز جو ہیں، جو اچھی میموریز ہیں، وہ اس سنگیت کے ساتھ بھی جڑی ہوتی ہیں. ڈاکٹر شرما، سسٹر شیوانی، تھینک یو سو مچ آج کی پوری بات.
ٹو انکریز آر میموری اینڈ پروٹیکشن فرام ڈیمینشیا ان دا لیٹر ایئرز، فرسٹ اسٹیج از ٹو گیو اٹینشن، سیکنڈ is concentration, third is registration. This is short-term memory. If it is repeated many times or put into action, it is a mid-term memory. Long-term memory is related to our identity and things close to us. Overload of information and multitasking does not allow proper registration. Excessive anxiety, depression, certain vitamin deficiencies, improper diet, physical illnesses like blood pressure, diabetes, hypothyroidism, and lack of exercise can also be the cause of improper coding of the brain. Overuse of technology to register information affects our memory coding. To increase concentration on work and studies, keep away gadgets and other distractions. Cleansing of past painful memories and keeping the mind light and powerful with meditation helps to increase memory power.
If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.